તારીખ 4/6/1996 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથમાં અનુભવ વર્ણન વિષય ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન. મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
અનુભવ વર્ણન. અબ અનુભવ કા મને આત્માનુભવ કા સ્વાનુભવ કા વર્ણન ઇસ અધિકાર મે લિખા ભૌગોલિક કર્મશીલ કર્મશૈલી પાંચ ઇન્દ્રિય ઓર છઠ્ઠા મંદિર સંગલી દેહ બના હૈ દેહ હૈ ભૌગોલિક કર્મ કે નીચે બના હુઆ હૈ પાંચ ઇન્દ્રિયા ઓર છઠ્ઠા મન હૈ મન કો સંગી કહેતે હૈ મન રહિત કો અસંગી કહેતે હૈ મન સહિત કો સંગી કહેતે હૈ ઉસ દેહ મેં ઉસકે પ્રમાણ મેં રહા હુઆ જીવ દ્રવ ભી ઇન્દ્રિય ઓર મન સંજ્ઞા કા નામ કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ ऐसे देह में जो जीव है उस जीव को भी पंचेंद्रिय जीव कहते हैं और मन सहित होते हैं तो संगी जीव भी कहने में आता है। भाव इंद्रिय भाव मन ऐसे छह प्रकार से उपयोग परिणाम का भी भेद पड़ता है पड़ा हुआ है। भाव इंद्रिय पांच प्रकार के भाव चक्षु इंद्रिय भाव श्रोत्र इंद्रिय भाव रसना इंद्रिय जिस भाव से ज्ञान किया जाता है ये चक्षु इंद्रिय है वो पुद्गलिक रचना है वो द्रव्य इंद्रिय है और वहां वर्ण को देखने का रंग को देखने का जो सूक्ष्म भाव है उसको भाव चक्षु इंद्रिय कहते हैं। ऐसे पांचों इंद्रियों में जो भाव काम करता है उसको भाव इंद्रिय कहते हैं और मन के साथ जो भाव करता है विचार करता है उसको भाव मन कहने में आता है। ऐसा छह प्रकार हुआ। उपयोग का ये छह प्रकार है क्या है उपयोग का ये छह प्रकार है उपयोग के परिणाम जो है उनका छह भेद बोला। एक एक उपयोग परिणाम एक एक उपयोग परिणाम एक को ही देखे और जाने जैसे चक्षु देखती है देखता है और जीव से छपता है जीव से देखा नहीं जाता सुना नहीं जाता और कान से देखा नहीं जाता और चखा नहीं जाता एक से एक काम होता है दूसरा काम एक से होता नहीं है। मन का उपयोग परिणाम चिंता विकल्प को देखता है जानता है मन में जो चिंता होती है विकल्प होता है वो कैसा होता है वो जानने देखने में आता है। परिणाम विचार विकल्प यानी चिंता रूप मानने का होता है जो विचार रूप परिणाम है वो तो चिंता रूप है या विकल्प रूप है और उस प्रकार मानने का होता है, विचार पूर्वक मानने का होता है। ऐसा उपदेश है यह परिणाम भेद को मन नाम कहा है, ऐसा होने से उसका नाम दिया मन, क्यों वो मानता भी है, चिंता भी करता है, विकल्प भी करता है और मानता है, तो उसका नाम दिया मन। किस परिणाम का मन ऐसा नाम दिया, भाव मन। देखो संत, दूसरा अब इसको एक ज्ञान का नाम लेकर के कथन करता है, तो इसे पांच इंद्रियों और मन को ज्ञान का नाम देकर के अब कहेंगे, क्योंकि वो तो सूक्ष्म भावी है। जीव का जो ज्ञान का पर्याय है, उनका ये छह भेद हुआ। आंख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, आवाज का ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है, तो उसका नाम देंगे विज्ञान। यह ज्ञान का कथन से दर्शनादि सभी गुण आ गए, और ज्ञान की मुख्यता से बात करेंगे और भी सब गुण साथ में काम करते हैं, ऐसा ले लेना। मतलब वो है कि ज्ञान की प्रधानता है, सभी गुणों में ज्ञान को नेता की उपमा दी गई है। जैसे नेता एक होता है और समाज इसका अनुसरण करती है, लोग नेता को अनुसरण करते हैं, वैसे सभी गुणों में ज्ञान नेता के स्थान में है, इसलिए ज्ञान से बात करेंगे, बाकी तो सर्वगुण उसका अनुसरण करते हैं, तो सब गुण उसमें आ गया। जैसे नेता काम करता है तो कहेंगे कि पीछे वाले सब लोग वही काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका अनुसरण होता है। ठीक इस तरह यह मन इंद्रिय वेदों का ज्ञान का पर्याय का नाम मति संज्ञा है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। मन और इंद्रिय से जो ज्ञान प्राथमिक अवस्था में होता है, उसको मति ज्ञान ऐसा नाम दिया है। मन भेद ज्ञान से यानी विशेष ज्ञान से, मन का विशेष ज्ञान से, मन में विशेष ज्ञान होने से, अर्थ से अर्थांतर विशेष को जानता है। यह जानने को श्रुत संज्ञा कहते हैं। मन द्वारा विचार करके जो मति ज्ञान में जाना, उसी पदार्थ को विशेष रूप से जाना, अर्थ से अर्थांतर, मैंने इसके गुण, उसके पर्याय, उसकी बराबरी में दूसरे पदार्थ, ऐसा जो जानने का होता है विशेष रूप से, उनको श्रुत ज्ञान ऐसा नाम दिया गया है। कहां से कहां बात को ले गए कि पांच इंद्रिय और छठा मन से ये जो देह बनाने हैं, वहां छह प्रकार से काम करने वाला ज्ञान है, तो छह प्रकार को दो भेद में ले लिया, एक मति ज्ञान और एक सुप्त ज्ञान, क्योंकि बात अनुभव के लिए, आत्मानुभव को लेना है। और आत्मानुभव मति सुप्त ज्ञान में होता है, आत्मानुभव किस में होता है, मति सुप्त ज्ञान में होता है।
मति ज्ञान ये से होता है, मति ज्ञान से होता है, जो मति ज्ञान छूटने से होता है, छूटने से क्या होता है,
मति ज्ञान में, मति ज्ञान से मति ज्ञान ही करता और मति ज्ञान ही कर्म, मति ज्ञान ही संप्रदान उपादान और अधिकरण, छह प्रकार किसमें आ जाता है। आत्मज्ञान तो अध्यात्म भाषा का शब्द है, अनुभव ज्ञान अनुभूति आत्मज्ञान तो संवेदन ज्ञान ये अध्यात्म भाषा का शब्द है, और मति ज्ञान और सुत ज्ञान वो आगम भाषा का शब्द है, एक ही ज्ञान का नाम है। आगम में इसलिए उसको आगम भाषा कही कि आगम का आधार परमाणु है और अध्यात्म का आधार आत्मा है। जैसे मति श्रुत ज्ञान के नाम लिया तो ज्ञान को मति श्रुत ऐसी संज्ञा क्यों दी कि मति ज्ञानावरणीय कर्म से उत्पन्न हुआ ज्ञान को मति ज्ञान कहिए, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभ से उत्पन्न हुआ ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहिए, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभ से उत्पन्न हुआ ज्ञान को अवधि ज्ञान कहिए, मन पर्यवरण का आवरण जो है उसका क्षोभ जो होता है उसको कहते हैं मन पर्यवरण ज्ञान, और केवल ज्ञानावरणीय का क्षय से उत्पन्न हुआ क्षोभ नहीं होता, वहां होता है चारों में क्षोभ है, पांचवा में केवल ज्ञानावरणीय का क्षय से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उसको कहते हैं केवल ज्ञान, तो पांचों नाम है आगम भाषा में। अध्यात्म भाषा में जिसका आधार आत्मा है, स्वानुभव में आत्मा के अवलंबन से जो ज्ञान प्रवर्तित करता है उसको कहते हैं आत्मज्ञान या स्वानुभव, इस तरह से कहते हैं। ये दोनों ज्ञान के पर्याय दो प्रकार से हैं, कुरूप में विपरीत रूप और सम्यक रूप, अथवा असम्यक रूप मिथ्या रूप और सम्यक रूप, जाति दो है इसकी, ज्ञान की दो जाति सम्यक और मिथ्या, गति भी दो है सद्भाव और अभाव, पर शक्ति एक है स्वपर प्रकाशक, शक्ति गति और जाति तीनों से ज्ञान पर्याय को समझो तो ज्ञान पर्याय को समझने में फिर कोई असमाधान नहीं रहेगा और उसका अस्तित्व उसकी सत्ता क्षेत्र प्रमाण है। ब्रह्म का जब जितना क्षेत्र मैंने एरिया है क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई और गहराई वह उसका उतना अस्तित्व है, क्षेत्र प्रमाण सत्ता है, सत्ता गति शक्ति और जाति चार पहलुओं से कोई भी पर्याय को समझो पर्याय के विषय में फिर कोई असमाधान नहीं रहेगा। अब कहते हैं कि मिथ्यात्व का मूर्ति श्रुत रूप जानना है तो जानने में स्व पर व्यापक और व्यापक की जाति नहीं है। देखो किस ढंग से बात किया है कि मिथ्या दृष्टि जीव मति श्रुत रूप ज्ञान से जानने का प्रवृत्ति करता है, वो जानने में तो स्व पर व्यापक अव्यापक की जाति नहीं है, मैंने विंध्य व्यापकपणा नहीं है, तो स्व में पर का व्यापकपणा और पर में स्व का व्यापकपणा अनुभव करता है। मिथ्यात्व अवस्था में ये अनुभव की भूल है। कौन सी भूल है ये? इसको पर प्रवेश भाव भी कहा आगे। शुरू में ही इस ग्रंथ को लिखते लिखते पंडित जी ने पर प्रवेश भाव कहा है कि मेरा प्रवेश पर पदार्थ में है और पर पदार्थ का प्रवेश मेरे में है। जैसे कि हम किसी भी स्वाद को जब जानते हैं, साथ ही साथ ऐसा अनुभव करते हैं कि ये स्वाद मेरे में प्रवेश कर रहा है, मीठा रस है मानो, तो मीठा रस मेरे में आया ऐसा अनुभव होता है। मेरे में जैसे उसका कोई प्रवेश होता हो ऐसा अनुभव होता है, वो मिथ्या अनुभव है। क्योंकि रस है तो पुद्गल परमाणु की, जड़ परमाणु की, स्पर्श गुण की पर्याय, रस गुण की पर्याय है, रस गुण की पर्याय है। रस गुण का भेद लेने के खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, अरे फिर भेद गुण एक है, पर्याय में अनेक प्रकार उत्पन्न होता है। तो पुद्गल जड़ परमाणु है, उनका गुण इसमें है और उनकी अवस्था भी इसमें समाप्त होती है, परमाणु में ही समाप्त होती है। फिर भी खाते वक्त, चखते वक्त मेरे में वो आता है, ऐसा रस के वका व्यापकपणा अपने में अनुभव हो जाता है। यह अनुभव की भूल हुई। भूल दो प्रकार की होती है, एक समझ की और एक अनुभव की है। भूल दो प्रकार की होती है, एक समझ की भूल होती है और एक अनुभव की भूल होती है। समझ की भूल सच्ची समझ से दूर हो जाती है, क्योंकि समझ की भूल माने खोटी समझ, खोटी समझ है वो सच्ची समझ से दूर हो जाती है। पर जो अनुभव की भूल है वो सही अनुभव करने से दूर हो जाता है, दूर हो जाती है। जैसे रस की अवस्था, रस की पर्याय जड़ की जड़ में है, जड़ की चैतन्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि चेतन पदार्थ जो आत्मा है, जीव है, उसमें रस गुण नहीं, रस की पर्याय भी नहीं और स्पर्श का गुण नहीं, इसलिए स्पर्श की पर्याय नहीं। तो जल परमाणु को स्पर्श करके, स्पर्श कर सके वो भी नहीं है, तो स्पर्श नहीं कर सके तो अपने में उतार सके, व्यापक हो सके, तो व्यापक व्यापक भाव का अनुभव तो झूठा अनुभव है। मिथ्या अनुभव माने झूठा अनुभव है। जीव भूल नया खाता है, जीव भूल नया खाता है। ये जो मुनिराज है, नग्न दिगंबर अवस्था में ठंडी गर्मी में जाड़े के दिन में अवस्था गर्मी के दिन में बिना दुखी हुए आकुलित हुए बिना शांति में डूबते हुए कैसे रह सकते हैं, क्यों अनुभव करते हैं कि ठंडी गर्मी की अवस्था जो है वो तो स्पर्श गुण की जड़ की अवस्था है, मेरे चैतन्य की अवस्था में उसका प्रवेश नहीं, उसका स्पर्श नहीं,
बराबर,
तो मुझे छूती नहीं। ऐसा स्पष्ट भिन्न अनुभव अपने आत्मा का रहता है, सुख का अनुभव करता है, दुखी नहीं होते कभी। बाह्य दृष्टि लोग ऐसा समझते हैं कि महाराज बहुत दुखी है, इतनी ठंडी में उनको कोई आश्रय नहीं है, लेकिन वो बात गलत है। एगंत सुई मुनि वितरागी, जगत में कोई सुखी है तो एक वितरागी मुनि है, क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, जितनी आवश्यकता अधिक इतना दुख भी अधिक, क्योंकि उसकी उपाधि बढ़ेगी, उसको उसको उपाधि बढ़ेगी, उपाधि का नाम ही दुख है। गुरुदेव कहते थे कि राजा महाराजा सेठ श्रीमंत साहूकार अधिक दुखी है संसार में, क्योंकि उन लोगों की जरूरत ज्यादा है और ऐसी संपत्ति नहीं होने के बाद भी जिसकी जरूरत वांछा तीव्र है वो दुखी ज्यादा है। इसलिए संगी से असंगी दुखी ज्यादा है, असंगी से चार इंद्री तीन इंद्री दो इंद्री एक इंद्री ऐसे दुख बढ़ता जाता है, क्यों कि वांछा की आकुलता बढ़ते 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 इसका ज्ञान सिकुड़ गया, ज्ञान को आवरण आने लगा। जीव जितनी परद्रव की वांछा करता है उतना ही आवरण को प्राप्त होता है, बंधन को प्राप्त होता है। क्या कहा कि मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञानी का स्व पर को जानने में व्यापक और व्यापक की जाति नहीं है, क्योंकि दोनों को एक पकड़ता है, दोनों की व्याप्ति अभेद लेता है, व्यापक और अव्यापक ऐसा दो जाति का भेद वो नहीं करता। भिन्न होने पर भी अभिन्नता का अनुभव करता है, लोग नहीं को अपने रूप जाने अथवा नहीं भी जाने, जानकारी में तो कभी नहीं को अपना रूप जानता है, कभी नहीं भी जानता है, क्या कुछ एक नहीं को तो अपने रूप जानता है और कुछ एक नहीं को अपने रूप नहीं जानता है, कि ये मकान मेरा है पड़ोसी का जो है वो मेरा नहीं है। मिथ्यात्व के जानने में कुरूपता में विपरीतता है, तो विपरीत जानता है, वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा नहीं जानता, विपरीत जानता है। सम्यक दृष्टि पर को पर जानता है और स्व को स्व जानता है, ये वस्तु का स्वरूप है, अपने आत्मा को स्वयं के रूप में जानता है और उसको छोड़ करके जितने भी पदार्थ है उनको पर रूप में जानता है। अध्यात्मिक चारित्र में पर को निज रूप अवलंबन करता है। अब विलंबात लिया आचरण का कि जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है तो आचरण में पर को निज रूप अवलंबन करता है, शरीर और दूसरे पदार्थ है उसमें अवलंबन ले लेता है। चारित्र में अवलंबन की बात लिया, ज्ञान में जानने की बात है, श्रद्धा में मानने की बात है और आचरण में अवलंबन करने की बात है। आत्मा का अवलंबन नहीं लेकर के, शरीर का और अन्य पदार्थ का अवलंबन लेना, आधार बुद्धि में आना, उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। मैं शरीर के आधार से जीता हूं, शरीर को टिकने वाले अन्न पानी और वायु से मैं जीता हूं और अन्न पानी वायु मिले जिस साधन से, ऐसे पैसा से मैं जीता हूं, पैसा मिले ऐसे दुकान से मैं जीता हूं। दुकान को भी नमस्कार करता है ना, सुबह जाता है तो नमस्कार करता है और जिस दुकानदारी ग्राहक से चलता है वो ग्राहक के कारण से मैं जीता हूं। ऐसे ऐसे सूत्र लिखते हैं, ग्राहक है वो हमारा परमेश्वर है, बात तो ठीक है। अच्छा नहीं लिखता है कि पैसा ही मेरा परमेश्वर है। भाव तो भी है कि आधार बुद्धि की बंजार बहुत लंबी है, इसकी बंजार बहुत लंबी है। क्योंकि पर को स्व माना, पर को स्व मान करके पर का अवलंबन लिया, यही हुआ मिथ्या चारित्र। जब तब सम्यक दृष्टि निज को निज रूप अवलंबन करता है तो निरालंबन में ही रहता है, सम्यक दृष्टि है वो अपना स्वरूप का अवलंबन देता है कि मेरी जीवत्व शक्ति से मैं अनंत काल से जी रहा हूं और अनंत काल पर्यंत जीता रहूंगा, ये हमारी जीवत्व, मेरी जीवत्व शक्ति के कारण से मैं शाश्वत जीने वाला पदार्थ हूं। बिना किसी के मैं जिंदा रहने वाला हूं और बिना किसी के मैं अभी ही पूर्ण हूं, इसलिए आवश्यकता नहीं तो दीनता नहीं है। ऐसा स्वरूप ज्ञान स्वरूपानुभव में होता है, इसलिए अनुभव का प्रकरण चलाएगा। भले ही अविरत सम्यक दृष्टि है लेकिन ज्ञान ऐसा होता है। जब सम्यक दृष्टि निज को निज रूप अवलंबता है, अवलंबन करता है, सम्यकता मैंने सम्यकपना, सम्यकत्व, स्वविकल्प निर्विकल्प रूप से दो प्रकार से है। सम्यकता दोनों अवस्था में होती है ऐसा कहना है। सम्यकता खुद पर निर्विकल्प है लेकिन जीव निर्विकल्प होता है, प्रथम निर्विकल्प स्वरूप का अवलंबन लेकर के निर्विकल्प शुद्धोपयोग में आता है तब सम्यकता पैदा होती है। फिर स्वविकल्प दशा में फिर सविकल्प दशा में आता है ज्ञानी, संयुक्तता चालू रहती है। इसलिए दो प्रकार कहा, फिर संयुक्तता चालू रहती है, संयुक्तता नहीं मिलती। ज्ञान स्वरूप में गया, उपयोग स्वरूप में लगा, इसलिए तो सम्यक है ही, लेकिन उपयोग बाहर गया इसलिए फिर असम्यक हो गया, वो बात नहीं है। इसलिए इसका दो प्रकार लिया है। निर्विकल्पता के साथ भी सम्यकता की व्याप्ति है और स्वविकल्पता में भी सम्यकता की व्याप्ति ही है, इसलिए दो प्रकार कहा। जगन्य ज्ञानी मैंने अविरत सम्यक दृष्टि, वो जगन्य ज्ञानी है। अविरत सम्यक दृष्टि है वो जगन्य ज्ञानी है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान की अपेक्षा, केवल ज्ञान के आगे वो अनंतमय भाग में उसका ज्ञान है, इसलिए बहुत कम ज्ञान है। सम्यक दृष्टि को बहुत कम ज्ञान है, ठीक। और ज्ञान जघन्य होने से, यानी बहुत कम होने से, तो परज्ञेय को परज्ञेय में जाता है, जघन्यता के कारण से वो पर में जाता है, चला जाता है, स्व में उतना रहता नहीं। तो जघन्य ज्ञानी है परज्ञेय को और व्यापक रूप का जानना अव्यापक रूप से होता है और स्व का जानना व्यापी व्यापक रूप से होता है। इस प्रकार का जानने का प्रोसेस मुमुक्षु दशा में अवलोकन के काल में चालू होता है। अवलोकन करने वाला मुमुक्षु भीतर में यह देखता है कि मेरे परिणाम तक मेरा अस्तित्व है, परिणाम से आगे मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा परिणाम चलता है वहां मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस पदार्थ को लेकर के मेरा परिणाम चलता है वहां मेरी व्यापकता नहीं है, उसका अवलोकन करता है मुमुक्षु की भूमिका में। और ज्ञानी की भूमिका में ऐसा अनुभव रहता है बिना विचार, पर को जानता है ज्ञानी भी, पर को भले ही जगन में ज्ञानी हो तो भी, पर को जानने के काल में पर से अव्यापक रूप से जानेगा और स्वयं को व्यापी व्यापक रूप से जानेगा। जानता है दोनों को, लेकिन वह बहुत बड़ा अंतर है। पर पदार्थ को भी जानता है पर स्वयं को भी जानता है, जानने जानने में बहुत अंतर है। पर को जानते ही मेरी व्याप्ति उसमें नहीं है ऐसा जान लेता है, विचार नहीं करना पड़ता, बिना विचार जान देता है और स्वयं को व्यापी व्यापक रूप से जानता है। ऐसा दोनों को जानने में भेद पड़ जाता है। जैसे हम गांव के कोई बड़े ऊंचे स्थल से हजारों मकानों को देखते हैं, गांव के ऊंचाई से देखे तो
जी,
तो उसमें ऐसा विचार करने पड़ता है कि ये सारे सिटी का जो मकान है वो कोई मेरा नहीं है, ऐसा विचार करना पड़ता है। और देखते 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 नजर अपने मकान पर गई, विचार नहीं करना पड़ता कि ये मेरा मकान है, ये सैकड़ों मकानों में ये मेरा है, ऐसे दृष्टि से ऐसा कॉन्सेप्ट है तो अपना दिखेगा। और बाकी के सब अपने नहीं है ऐसा बिना विचार तो पराया दिखेगा। अपना पराया का भेद निश्चय अनुसार होता है, क्योंकि पहला निश्चय है, कॉन्सेप्ट है कि ये मेरे बाकी के मेरे नहीं, बात खत्म। फिर इन दृष्टि से देखेगा बिना विचार।
ज्ञानी
का ऐसा निश्चय
अनुभव
निश्चय पूर्वक अनुभव है, निश्चय तो भाव वासन में हो गया ना, फिर अनुभव हुआ उसको निश्चय पूर्वक अनुभव है, निश्चय तो है ही अनुभव है। अनुभव कहते हैं निश्चय इसके पिता में आ ही जाता है, लेकिन बेसिक बात निश्चय की है, वहां से फर्क पड़ा है। लेकिन हम मकान या गाड़ी बेच देते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करके पैसे ले लेते हैं, फिर बोलने में ऐसा बोलते हैं कि देखो ये मकान हमारा था, क्या कहेंगे कि ये हमारा मकान है जो हमने बेच दिया है, मकान हमारा है और हमने बेच दिया भी है, हमारा है ऐसा बोल देगा। लेकिन ज्ञान में अपनत्व रहेगा, क्योंकि निश्चय हो गया कि मेरा नहीं है, बेच दिया। दुर्गे को बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे निश्चय के विषय में, कि अपने परिवारों में लड़की पैदा होती है, जब उनकी सगाई हो जाती है तब से उनको अपनत्व तो छूट जाता है घर में से, ये घर मेरा नहीं, जहां सगाई हुई है वो घर मेरा। निश्चय कैसा बदलता है, अभी तो उसी घर में है, शादी नहीं की वहां तक तो घर छोड़ा नहीं ना, लेकिन परिणाम में परायापन हो जाता है, अपनत्व नहीं रहता है। तो यहां से तो जितना मुझे मिलेगा उतना मेरा, बाकी कोई चीज मेरी नहीं है, तो देश में जितना मिलता है उतना ही मेरा बनाया गया उसमें। ऐसे सम्यक दृष्टि को अपना स्वरूप में अपनत्व का निश्चय हुआ, पर में अपनत्व का निश्चय वो छोड़ दिया, वो बेच दिया सब, शरीर से लेकर के मकान संपत्ति परिवार सब पराया हो गया, मेरा कोई नहीं है, नजर बदल गई, इसमें मेरा कोई है ही नहीं, मेरा स्वरूप ही मेरा है, क्योंकि मेरी व्यापकता मेरे स्वरूप में है, मेरी व्यापकता कहीं और पदार्थ में नहीं है। ऐसे स्व पर को साथ जानने में स्वविकल्प दशा होती है, उसको कहेंगे स्वविकल्प सम्यक्ता। एक बात क्या दूसरी
ऐसी एक चीज है, हम समय दृष्टि को ज्ञान है ना थोड़ा होती है, ज्ञान थोड़ी ना थोड़ा होता है, ज्ञान तो पूरा का पूरा ही है, ज्ञान का तो पूरा का पूरा ही होगा, ज्ञान तो नहीं होता अधूरा होता है।
प्रश्न
प्रश्न होता है कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान को तो पूरा होता है, अधूरा को थोड़ी ना होता है। जगन ज्ञानी क्यों कहा जगन? जगन में थोड़ा अल्प
डिग्री का फर्क पड़ता है, पर जाति तो एक ही ना हो तो ज्ञान तो जो
जाति की अपेक्षा वहां बात नहीं चलती है, गति की अपेक्षा बात चलती है। ज्ञान का सद्भाव और ज्ञान का अभाव, तो केवल ज्ञान में ज्ञान का पूरा सद्भाव है
बराबर,
और सम्यक दृष्टि को चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञान का अभाव ज्यादा है, सद्भाव थोड़ा है
बराबर।
ये बराबरी करते हैं केवल ज्ञान के, पूरा ज्ञान के, संपूर्ण ज्ञान के साथ उसकी बराबरी करते हैं।
भैया ज्ञान में बदले श्रद्धा वापरी तो केवल ज्ञान जी पूछे ना, ज्ञान में बदले श्रद्धा शब्द वापरी होती तो पीछे सम्यक दृष्टि पर केवल ज्ञान जी पूछ सकता है।
श्रद्धा अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान धारी तिर्यक हो और सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमात्मा हो, दोनों एक सरीखे हैं, दोनों एक सरीखे हैं, दोनों की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। कोई कहेंगे कि नीचे तो सूक्ष्म सम्यक दर्शन होता है और केवल को यानी श्रेणी से लेकर के क्षायिक संकित हो जाता है, बाद में केवल ज्ञान होता है, तो उतना तो फर्क है संकित में, तो आगम की विवक्षा में जाता है। उपशम क्षोक्षम और क्षायिक तो कर्म के आवरण की अपेक्षा है, श्रद्धा और श्रद्धा के विषय में कोई अंतर
नहीं है। संकित तो संकित ही है,
संकित तो संकित है और उसका विषय पूरा आत्मा ही है। उपशम का विषय भी आत्मा है, क्षोक्षम का विषय भी आत्मा है और क्षाई का विषय भी आत्मा ही है, किसी का विषय अधूरा नहीं है, अल्प नहीं है। इसीलिए संकित की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि पहचानना हो तो सम्यक से पहचानो, चाहे जिनेंद्र की पहचान करनी हो, चाहे मुनिराज की पहचान करनी हो, चाहे सत्पुरुष की पहचान करनी हो, सम्यक्त्व से पहचानो, क्योंकि ये तीनों में सामान्य है। और एक की पहचानों में, एक की पहचान में तीनों की पहचान आ जाएगी, वरना सत्पुरुष की पहचान में भगवान की पहचान नहीं आएगी, मुनिराज की पहचान नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व से पहचाना जाता है। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, दूसरी सम्यक्ता, दूसरा जो स्वयं स्वयं को ही जानने रूप अपने को ही व्याप्त व्यापक जानता रहे, यह निर्विकल्प रूप सम्यक्ता है। शुद्धोपयोग की बात कही कि अपने को ही जानता रहे व्याप्त व्यापक रूप से, अपने में लीन होकर के अपने को ही जानता रहे, तो उस वक्त निर्विकल्प दशा होती है, इसलिए उनको निर्विकल्प सम्यक्ता कहने में आती है। तो आचरण प्रधान सम्यक्ता का वर्णन किया, सविकल्प और निर्विकल्प तो आचरण का विषय है, सम्यक्त तो सम्यक्त है दोनों काल में, समेटने में कोई अंतर नहीं, लेकिन आचरण की प्रधानता से बात उपयोग बाहर जाता है ना, तो पराचरण हो गया, स्वयं में रहता है वो स्वाचरण हुआ, स्वयं में चरता है वो स्वाचरण और पर में चरता है वो पराचरण। सम्यकता नहीं जाते और उपयोग पर में जाने पर भी लब्ध ज्ञान स्वरूप सम्मुख रहता है, इसलिए एक ही पर्याय का एक अंग स्वरूप सम्मुख रहता है, एक अंग पर सम्मुख होता है, ऐसी बात होती है।
अद्वैत के बाद द्वैत दो वस्तु चालू होती है,
इसको कहते हैं मिश्र धारा, मिश्र धर्म अधिकार लिखा है, मिश्र धर्म अधिकार करके प्रकरण लिखा है इसी ग्रंथ में, अनुभव प्रकाश में एक पूरा प्रकरण लिखा है दुखी जी ने, मिश्र धर्म अधिकार। जो एक बार एक ही समय में स्व को सर्वस्वपण जाने तथा सर्व पर को परपने जाने, वहां चारित्र परम शुद्ध है।
देखिए स्व को स्वरूप मिलकर सर्वस्व,
वहां चारित्र परम शुद्ध है, आचरण प्रधानता से वर्णन चलता है ना, क्योंकि एक ही काल में एक ही बार में मैंने एक ही काल में एक ही समय में केवल ज्ञान जो होता है शुद्ध चारित्र लिया ना, परम शुद्ध चारित्र, चारित्र परम शुद्ध लिया, एक ही समय में स्व को सर्वस्व पने जाने, अपने को सर्वस्व रूप में अपने आप जाने, सभी पर को एक साथ पर सभी सबको पर रूप में जान ले, वहां चारित्र परम शुद्ध है, क्योंकि एक समय में ऐसा पूरा का पूरा सब पर को भिन्न भिन्न रूप में जाना। ऐसी यह सम्यक्ता को परम सर्वथा सम्यक्तता कहिए, पूर्णता हो गई वहां, तो अन्य चारित्र की जैसा पूर्ण हुई तो सम्यक्ता को भी पूर्ण कहा, चारित्र में स्वविकल्प बना रहा तो सम्यक्ता को स्वविकल्प सम्यक्ता कहा, और निर्विकल्पता रही तो सम्यक्ता को निर्विकल्प सम्यक्ता कही, और ऐसा केवल दर्शन और केवल ज्ञान पर्याय में ही होता है, ऐसा तो केवल दशा केवल की दशा में ऐसा होता है। बहुत विस्तार से लिखा है एकदम, विषय को छेड़ा है थोड़ा विस्तार से छेड़ा है अच्छी तरह, वो और कहते हैं कि दूसरा जो विप्रति उपयोग लगाता है अन्य ज्ञेय के प्रति उपयोग लगाता है उसको ही जाने, अन्य को न जाने, मैंने अपने को ही नहीं जाने, जिस ज्ञेय में उपयोग लगाता है वहां एकाकार हो जाए, मिथ्यात्म का या सम्यक दृष्टि का ये प्रयोग ज्ञान तो एक सरीखा है, परंतु भेद उतना ही है कि मिथ्यात्म जितनी जितना जाने उतना अयथार्थ रूप साधता है, जबकि सम्यक दृष्टि यही भाव को जाने और सबको यथार्थ रूप साधे। उपयोग में तो हमेशा एक ही विषय रहता है, सदमस्त के उपयोग में दो विषय कभी नहीं रहता। तो उपयोग को तो जान लगेगा, उसको जानेगा, अन्य को नहीं जानेगा। तो सामान्य बात होगी, सम्यक दृष्टि को भी ऐसा है, मिथ्या दृष्टि को भी ऐसा ही है। उपयोग में तो एक भी को जान सकता है। अब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का मेरे को जानने में तो इतना एक सी बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो देखिए को जानेगा उपयोग से, तो परंतु उतना भेद है, उतना उसमें रहस्य है कि मिथ्या दृष्टि जितना जानेगा और यथार्थ रूप जानेगा, सम्यकता नहीं है इसके पास, इसलिए उसका जितना जानना है वो अयथार्थ है। और सम्यक दृष्टि यही भाव को जाने तो सबको यथार्थ रूप सकता है। मैंने पर को जाने इसलिए उसको दोष होता है वो बात नहीं है। सम्यक दृष्टि पर को जानता है इसलिए उनको दोष होता है, सो बात नहीं है, क्योंकि यथार्थ रूप जानता है। कैसे यथार्थ रूप जानता है? पर को पर जानता है, इसलिए तो पर को पर रूप में जानने से पर से मेरा कोई वास्ता नहीं है।
पर को जानने से अगर विकृति होती तो पर तो केवल जानने भी जानने में आता, वहां पर भी विकृति हो जाती
है। हाँ, पर को जानने से विकृति होती तो केवल ज्ञान में सबसे अधिक विकृति हो जाती, क्योंकि उसमें तो लोकालोक का ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में तो लोकालोक का ज्ञान होता है, इसलिए पर को जानना ये तो ज्ञान का दोष नहीं है। दोष तो तब होता है कि पर को स्व के रूप में जाने तो पर को स्वयं के रूप में जाने तो अपने अपनापन करे तो जानते ही अपनापन करे तो जैसे शरीर को जानता है जी, तो मेरा शरीर ऐसा जाना तो देहात्म बुद्धि होगी, तो देहात्म बुद्धि वो ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान है और कोई परिभ्रम का कारण। लेकिन शरीर को पर रूप जाना, आकाश की अपेक्षा से एक क्षेत्रावधाई है, क्षेत्रावधा में आकाश निमित है, निमित की अपेक्षा से एक क्षेत्रावधाई है, उपादान की अपेक्षा से दोनों निज निज क्षेत्र में अवगाहन करता है। शरीर के एक परमाणु में भी आत्मा नहीं, शरीर के एक भी परमाणु में आत्मा नहीं है। थोड़ी चमड़ी खोल करके देखिए, आत्मा है क्या? एक परमाणु को अलग करके देखो, आत्मा नहीं है। और आत्मा के क्षेत्र में किसी कहीं भी छोटे से छोटा एक प्रदेश में भी, क्षेत्र के एक अंश में भी परमाणु नहीं है। देह के अनंत परमाणु जड़ है, हमारी आत्मा उसमें चेतन है, उसमें शरीर भी, मेरे आत्मा में शरीर भी, और शरीर में मैं, शरीर में मैं नहीं हूं। मेरा शरीर ऐसा कहना झूठा है, सभी मेरा नहीं है, सभी परमाणु का है। परमाणु में कुछ भी हो मेरे से क्या लेना देना है, परमाणु में कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या लेना देना है उससे। इसलिए शरीर की अवस्था के फेरफार से ज्ञानी को सुख दुख होता नहीं है। जब ज्ञानी को बीमारी आई मेंटल डिप्रेशन में आ जाएगा, हार्ट डिजीज हुआ कैंसर हुआ मेंटल डिप्रेशन में आ जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं किया, उसको क्या झूठा अनुभव होता है कि मुझे कुछ हो गया और शरीर का नाश से मेरा नाश हो गया, मैं मर गया। अब तुम कभी मरा होता तो अभी जिंदा कहां से होता, कभी भी भूतकाल में तुम मरा होता तो अभी जिंदा कहां से होता, वो देखो ना। तो जीव कभी मरता, मृत्यु जिसका नाम है वो तो शरीर और आत्मा का संयोग का वियोग हुआ, इसी का नाम है। वो तो शरीर और आत्मा का जो संयोग था इसका वियोग का नाम मृत्यु है। उसमें परमाणु भी मरता नहीं यानी अभाव होता नहीं और जीव का भी अभाव होता नहीं। परमाणु पर्याय से पर्याय अंतर होता है, अवस्था से अवस्थांतर होता है, जीव भी अवस्था से अवस्थांतर हो जाता है, रूप से रूपांतर होता है और कोई बात नहीं होती उसमें। मृत्यु तो किसी का होता नहीं, मृत्यु होता है किसी का, परमाणु का होता है, जीव का होता है, किसका होता है दिखाई, किसी का मृत्यु होता ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा भय मृत्यु का होता है, वो ज्ञानी को होता सबसे बड़ा भय नहीं होता है, तो छोटा तो कहां से होगा ही। हाँ, जो सुई से नहीं डरते वो कुत्ता से पिल्लू से डरेंगे क्या? हाँ, मृत्यु से नहीं डरता वो किससे डरेगा?
मुक्षता की भूमिका से तो भय चला जाता
है। मुक्षता में भी बल बढ़ता है, ज्ञान बल बढ़ता है, तो मृत्यु का भय वहां खत्म हो जाता है। ज्ञानी को तो होता ही नहीं, उनको तो मृत्यु का अवसर आता है यानी शरीर का वियोग होने का उनको आसार दिखता है, तो वो आनंद में आ जाता है क्या? जैसे महोत्सव में आनंद होता है, हमारा महोत्सव आ रहा है क्या? मृत्यु महोत्सव। हमारे शास्त्र में ऐसे प्रकरण आता है, मृतकरंद श्रावकाचार, श्रावकाचार का ग्रंथ है, मृत्यु महोत्सव है। वहां महोत्सव में आनंद होता है, क्यों? पुरुषार्थ तेज होगा, आनंद भी बढ़ जाएगा और निर्जरा अधिक हो जाएगी, शुद्धि की वृद्धि हो जाएगी, इससे ज्यादा कमाई और दूसरे प्रसंग में होती नहीं। इसलिए ज्ञान की बात ही अलौकिक होती है, लौकिक स्तर का उसका कोई मेल खाता नहीं। और बात अगे भी है, कल भी करते हैं।